दिन भर तारीख 3 सितंबर दिन गुरुवार। मैं हूं विनीत खरे। यूरोप में शरणार्थी संकट गहराया। बुडापेस्ट में पुलिस और शरणार्थियों के बीच नोकझोंक।
Imagine yourself in our place. Imagine yourself in our place. You are a human. We are a human. You have kids. We have kids. You are educated. We are educated.
द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के 70 साल पूरे होने पर चीन में विशाल सैन्य परेड। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध पर विशेष सीरीज की तीसरी कड़ी में आज सुनिएगा ऑपरेशन जिब्राल्टर की कहानी।
There was no reaction from the Kashmiris. They were expecting कि कश्मीरी अब के बोलेंगे। 47-48 में तो नहीं बोले।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के नजदीक प्रवासियों और पुलिस के बीच झड़पों की खबरें आ रही हैं। ये झड़पें तब हुई जब प्रवासियों और शरणार्थियों को जबरन एक ट्रांजिट कैंप में भेजा जा रहा था। इससे पहले प्रवासियों से खचाखच भरी एक ट्रेन बुडापेस्ट के अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन से रवाना की गई थी। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक प्रवासियों को लगा कि ट्रेन उन्हें ऑस्ट्रिया की सीमा पर छोड़ देगी, लेकिन बिस्क शहर में ही ये रुक गई थी। प्रवासी ट्रेनों से उतरकर विरोध करने लगे और हंगरी की पुलिस ने कहा कि बिस्क स्टेशन को ऑपरेशन जोन बनाया गया है। मलेशिया की सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि करीब 100 लोगों को ले जा रही एक नाव देश के पश्चिमी तट के पास पलट गई है। मलेशिया की मैरिटाइम एजेंसी के एडमिरल एलियास हमदान ने कहा कि संभव है कि नाव इंडोनेशिया के मजदूरों को घर ले जा रही थी और हो सकता है कि क्षमता से ज्यादा लोग नाव में सवार थे। उन्होंने कहा कि 15 लोगों को बचाया जा सका है, जिनमें एक महिला और 14 पुरुष हैं। इसके अलावा 14 शव निकाले गए हैं, जिनमें 13 महिलाओं और एक पुरुष का शव है। एडमिरल एलियास हमदान। एक बचाए गए व्यक्ति के अनुसार इस नाव में इंडोनेशिया के लोग सवार थे। नाव मलेशिया से तांगजुंग बलाई जा रही थी। हम मानते हैं कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और मौसम भी खराब था। ये थे एडमिरल एलियास हामदान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की की पुलिस ने ग्रीस जा रही नाव के डूबने से हुई 12 लोगों की मौत के मामले में 4 संदिग्ध मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। मारे गए लोगों में 3 साल का सीरियाई बच्चा आयलान कुर्दी भी शामिल था, जिसके शव की तस्वीर दुनिया भर के अखबारों और सोशल मीडिया में छा गई है। आयलान की मां और 5 साल का भाई भी इस हादसे में मारे गए थे। ये नाव सीरियाई शहर कोबेन से ग्रीस जाने के लिए निकले प्रवासियों को ले जा रही थी। इस बीच कनाडा के अप्रवासन मंत्री क्रिस अलेक्जेंडर अपना चुनाव प्रचार बीच में रोककर इस जांच में जुट गए हैं कि आयलान के परिवार के लिए कनाडा में शरण के लिए दी गई अर्जी क्यों स्वीकार नहीं की गई। ग्वेटमाला के राष्ट्रपति पद से ऑटो पेरेज मोलिना के इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति अलेक्जेंड्रो माल्डोनाडो कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति पद की ग्रहण कर सकते हैं। एक अदालत ने राष्ट्रपति पेरेज मोलिना के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पेरेज मोलिना के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। पिछले हफ्ते उन पर देश की कस्टम सर्विसेज में लाखों डॉलर का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिनभर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। कार्यक्रम में शुरुआत यूरोप में जारी शरणार्थी संकट से। सीरिया, इराक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के हजारों शरणार्थी जर्मनी जाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर ब्रसल्स में यूरोप के राजनयिकों की मुलाकात के कुछ ही देर बाद हंगरी में पुलिस अधिकारियों ने हजारों प्रवासियों और शरणार्थियों को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन में जाने की अनुमति दे दी है। बुडापेस्ट में पुलिस और प्रवासियों के बीच तब से नोकझोंक चल रही थी जब मंगलवार को पुलिस ने इन प्रवासियों को रेलवे स्टेशन में जाने की अनुमति नहीं दी थी। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
बुडापेस्ट के केलेती रेलवे स्टेशन में प्रवासियों और शरणार्थियों का यह हुजूम ट्रेन के पहुंचने पर खुशी से चिल्लाने लगा। प्रवासी स्टेशन के बाहर दो दिनों से डटे थे। जैसे ही स्टेशन के दरवाजे खुले, प्रवासियों की भीड़ स्टेशन में दाखिल हो गई। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरेबेन ने कहा है कि प्रवासियों को हंगरी छोड़ने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे अपने नाम दर्ज करवाएंगे। इससे पहले रेलवे स्टेशन के पास प्रवासियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। प्रवासियों का गुस्सा पुलिस पर तब भड़क उठा जब पुलिस ने उन्हें ऑस्ट्रिया जाने वाली ट्रेनों में चढ़ने से रोक दिया था। इस पर सीरिया से आए शरणार्थी भड़क उठे और हंगरी पर भी सीरिया के राष्ट्रपति असद बशर जैसा ही व्यवहार करने के आरोप लगाने लगे। मोहम्मद नाम के एक सीरियाई शरणार्थी अपनी दिक्कत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यूरोप को उनकी मानवीय त्रासदी को समझना चाहिए। सोचिए अगर आप हमारी जगह हों तो, खुद को हमारी जगह रख कर देखिए। आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आपके बच्चे हैं और हमारे भी बच्चे हैं। आप पढ़े लिखे हैं और हम भी पढ़े लिखे हैं। ये थे सीरिया से आए शरणार्थी मोहम्मद के शब्द। हालांकि रेलवे स्टेशन को प्रवासियों के लिए खोल तो दिया गया है, लेकिन एक सार्वजनिक घोषणा में यह भी कहा गया है कि पश्चिमी यूरोप की ओर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनों को अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया गया है। प्रवासियों के लिए स्टेशन में पहुंची पहली रेल के चालक का कहना है कि पश्चिमी यूरोप की ओर जाने के लिए कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है। उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री विक्टर ओरबेन ब्रसेल्स में अप्रवासी संकट पर हो रही चर्चा में भाग ले रहे हैं। इस बैठक से पहले यूरोपीय संसद के अध्यक्ष मार्टिन शुल्ज ने प्रधानमंत्री विक्टर ओरबेन के साथ एक साझी पत्रकार वार्ता की है। शुल्ज ने आगाह किया है कि अगर यूरोपीय संघ के देश प्रवासियों के संकट से निपटने के लिए एकजुटता नहीं दिखाते हैं तो यूरोपीय संघ में एक गहरी टूटन आ सकती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए पूरे यूरोप को साझे तौर पर समझदारी दिखानी होगी। कई देश अपने स्वार्थ को आगे रख रहे हैं। हमें इस कठिन समय में यूरोपीय संघ के लिए ईमानदार होने की जरूरत है। अगर हम सभी यूरोपीय संघ के देशों के लिए निर्धारित अनुबंध के आधार पर इस समस्या के लिए साझा समाधान तलाशने की ओर नहीं बढ़ेंगे तो यूरोपीय संघ में एक गहरी टूटन आ सकती है। ये थे यूरोपीय संसद के अध्यक्ष मार्टिन शुल्ज के शब्द। यूरोप में दाखिल होने वाले प्रवासियों की संख्या बीते महीने 170,000 के आंकड़े को पार कर गई है। प्रवासियों की बढ़ती संख्या के कारण यूरोपीय संघ में प्रवासी नीति को लेकर मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। इस बीच तुर्की की एक न्यूज एजेंसी ने एक समुद्र तट पर औंधे मुंह गिरे एक 3 साल के मृत सीरियाई बच्चे की तस्वीर जारी की है। इस बच्चे की मौत ने प्रवासियों के इस संकट को एक नया आयाम दे दिया है। पूरी दुनिया में लोग इसे ट्विटर पर और दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शेयर कर रहे हैं। दूसरे देशों में अवैध तरीकों से जाने की कोशिशों में इस साल कई लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन इस बच्चे की मर्मस्पर्शी तस्वीर के सामने आने के बाद से इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब अधिक मानवीय आधार पर देखे जाने की बहस खड़ी हो रही है।
ये थे रोहित जोशी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के 70 साल पूरे होने पर चीन ने बीजिंग के ऐतिहासिक तियानमेन चौक पर विशाल सैन्य परेड निकाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दुनिया भर के कई नेता इस परेड को देखने के लिए मौजूद थे। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए पंकज प्रियदर्शी से।
चीन ने बीजिंग के तियानमेन चौराहे पर इस जीत की 70वीं सालगिरह की शुरुआत 70 तोप के गोले दाग कर दी। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस युद्ध में मारे गए चीन के लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि जापान पर मिली इस जीत ने चीन को एक बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित किया। इस युद्ध विरोधी प्रयास के दौरान मिली जीत विदेशी आक्रमण के खिलाफ हमारी पहली जीत थी। इस जीत ने जापान के सैन्यवाद और उनकी हमें गुलाम बनाने की मंशा को पूरी तरह कुचल दिया था। इस जीत ने दिखा दिया कि चीन एक महान शक्ति के तौर पर उभर रहा है। इस जीत ने हमें एक नए चीन की दिशा की ओर आगे बढ़ाया है। ये थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शब्द। चीन के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा है कि चीन अपनी ताकत का इस्तेमाल गैर वाजिब वर्चस्व स्थापित करने के लिए नहीं करेगा। इससे पहले कार्यक्रम में दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले चीनी सैनिकों की अगुवाई में 12,000 चीनी सैनिकों ने तियानमेन चौराहे पर बैलिस्टिक मिसाइलों, टैंकों और हथियारों से लैस वाहनों के साथ मार्च निकाला। उधर जापान ने चीन के राष्ट्रपति के इस संबोधन से निराशा जताई है और कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों की ओर मित्रता बढ़ाने की दिशा में कोई भी इशारा नहीं किया है।
ये थे पंकज प्रियदर्शी और इस सैन्य प्रदर्शन पर मैंने थोड़ी देर पहले बीजिंग में सैबल दास गुप्ता से बात की।
आज बीजिंग में जो परेड हुई है उससे चीन सरकार दुनिया को ये बताना चाहती है कि हम आर्थिक तौर से मजबूत राष्ट्र तो है ही, लेकिन मिलिट्री के नज़र में उसमें भी हम उतने ही मजबूत हैं। ये बताना चीन के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है कि अमेरिका के बाद कई एक देश ऐसे हैं जो अपने आप को उतना ही मजबूत, दो नंबर का मजबूत मानते हैं। आज मॉस्को में जो मई महीने में मार्च हुआ और आज का जो परेड है उसका उन्होंने दुगुना स्ट्रेंथ दिखाया, ये दिखाने के लिए कि हम सच में एक बहुत बड़े मजबूत देश है और हमारा जो रोल है दुनिया में वो उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना अमेरिका का है।
ये भी घोषणा की गई है चीन की तरफ से कि चीन जो अपनी मिलिट्री पर्सनल है, जो स्ट्रेंथ है, उसमें करीब 3 लाख सोल्जर्स की, सैनिकों की कमी कर रहा है, उसे कैसे देखा जा रहा है?
3 लाख सैनिकों को कमी किया जा रहा है 23 लाख में से, मतलब 12-13% कम किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत भयानक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 5-6% तो हर साल रिटायर होते हैं और नई भर्तियां बहुत कम है आज के जमाने में। चीन आज ऐसे तबके पे पहुंचा है कि जहां बेरोजगारी बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए कम करने से इतना देश को ज्यादा हानि नहीं होगा। टेक्निकी और टेक्नोलॉजी के तौर पे चाइनीज की जो मिलिट्री है वो बहुत ही मजबूत हो गई है, उसका अब लोगों की जरूरत नहीं है, उनको कंप्यूटर्स की जरूरत है, उनको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और वो एक छोटा आर्मी रख के ज्यादा शक्तिशाली आर्मी, इफेक्टिव आर्मी करना चाहते हैं।
ये जो परेड हुई है सेवल, पड़ोसी देश हैं जिनके साथ चीन के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं चीन के, क्या आज की जो सैन्य परेड है उसे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से देखा जाए?
चीन के आज करीबन 9 देशों के साथ तकरार चल रही है, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, ब्रुनाई, भारत, कई ऐसे देश हैं, यहाँ तक कि रशिया के साथ भी था, अभी कुछ कम हुआ है। तो ये सारे देशों को ये लगता है कि चीन की मजबूती उनके लिए खतरनाक है, भारत को भी लगता है। 3 प्रकार के मिसाइल्स आज दिखाए गए हैं, एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो जापान वगैरह आसपास के देशों को टारगेट करने के लिए, मीडियम रेंज मिसाइल जो दिखाया गया है वो 100% भारत के लिए है, और ये कहा भी जाता है कि किस लिहाज से बनाया गया है, और लॉन्ग रेंज मिसाइल करीब 3 जो अमेरिका के जो बेस है गोम में है, ओकिनावा जापान में है और दूसरी पैसिफिक ओशन में है, उसको डायरेक्ट कर रही है, सीधा अमेरिकन जहाजों को, उनके बेस को, मिलिट्री बेस को आक्रमण करने के लिए वो मिसाइल्स हैं। एक मिसाइल 8,000 स्क्वायर किलोमीटर लंबा है जो सीधा अमेरिका के एक टेरिटरी के अंदर लैंड कर सकता है, इसे भी आज दिखाया गया था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि चीन अपनी मजबूती दिखा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है कि सिर्फ चमकते हुए वेपन्स और चमकते हुए स्टील दिखाने से कोई काम नहीं होता, उसको चलाने के लिए ऐसे आदमी चाहिए, शक्तिशाली आदमी चाहिए जो चीन के पास नहीं है।
ऐसे आयोजन में जहां दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हों, वहां पर भारत की ओर से जनरल वी के सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष और मंत्री हैं वो, उन्हें भेजना, ये इसे किस तरह का सिग्नल चीन में देखा जा रहा है?
ये सवाल पूछा गया था विदेश मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि हमको, हम भारत का जो डिसीजन है, निर्णय है, उसकी हम इज्जत करते हैं। पहले आप देखिए कि सिर्फ 17 देशों ने अपने मिलिट्री भेजे हैं, बाकी लोगों ने तो मंत्री ही भेजे हैं। ये जो 17 देश भेजे हैं उसमें से 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 7 लोगों को भेजा है, जैसे अफगानिस्तान है, बाकी जो 11 देश हैं उसमें पाकिस्तान शामिल है और दूसरे देश शामिल है, उन्होंने कुछ, रशिया सबसे बड़ा कंटेनमेंट भेजा है जिसमें 85 लोग हैं, उसके बाद पाकिस्तान आता है जो कि 75 लोग हैं उसके अंदर, लेकिन ये सारे देश बहुत छोटे हैं और दुनिया में इनका कोई खास वजूद नहीं है।
बीजिंग से ये थे टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सैबल दास गुप्ता। बीबीसी हिंदी सेवा में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूँ विनीत खरे और यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आपकी राय श्रोताओं की चिट्ठियों पर आधारित कार्यक्रम, इसे आप सुन सकते हैं या सुनेंगे घटना चक्र में। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत से पहले पाकिस्तान ने कश्मीर में हजारों घुसपैठिए भेजे थे, जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया गया था। इस अभियान का उद्देश्य कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना था। 1965 युद्ध की तीसरी कड़ी में रेहान फजल से आज सुनिए किस तरह ऑपरेशन जिब्राल्टर अपना उद्देश्य पूरा करने में असफल रहा।
5 अगस्त 1965 को गुलमर्ग के पास मोहम्मद दीन अपनी भेड़ें चरा रहे थे। उनके पास हरी सलवार पहने दो अजनबी आए, उनको 400 रुपए दिए और पूछा कि क्या इस इलाके में भारतीय सेना की कोई चौकी है। ठीक उसी समय जम्मू के मेंढर इलाके में दो संदिग्ध से दिखने वाले लोगों ने एक और शख्स वजीर मोहम्मद से यही सवाल पूछा। दोनों लोगों ने इन अजनबियों से सहयोग करने का नाटक किया, लेकिन तुरंत इसकी जानकारी भारतीय प्रशासन को दे दी। जाने माने पत्रकार इंदर मल्होत्रा याद करते हैं।
5 तारीख को अगस्त की बकरवाल गदड़िए हैं, उन्होंने देखा पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स को। अब 48 में भी यही हुआ था, तो ब्रीफिंग इन लोगों ने की 8 तारीख की शाम को दिल्ली में एलपी सिंह साहब के कमरे में। और उस जमाने में मोबाइल वगैरह था नहीं, मैं बैठा था, एक अम्बेसडर साहब जो ट्रांसफर पे आए थे और हॉस्टल में बैठे थे, उन्होंने बुला रखा था न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट को। मैं भी वहाँ बैठे विस्की पी रहे थे, तो मुझको पता नहीं लगा। जब घर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको होम मिनिस्टर ने भी और फॉरेन ऑफिस से भी फोन आते रहे, सो आई रैंग अप, सो आई देन वेंट टू एलपी सिंह। आई सेड दिस इज अ रिपीट ऑफ 1947।
ये लोग ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत भारतीय कश्मीर में घुसे थे। इसके तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीरी छापामारों के वेश में भारतीय कश्मीर में घुसकर स्थानीय लोगों को भारत के खिलाफ विद्रोह के लिए भड़काना था। 12 डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई थी। फील्ड मार्शल अयूब खां के बेटे गौहर अयूब खां कहते हैं,
रन ऑफ कच्छ का जो था पीरियड वो खत्म हुआ, तो उस पे जम्मू और कश्मीर में एक खामोशी सी थी। ये वजह यही थी कि वहाँ जो लीडर्स थे जम्मू और कश्मीर में मुसलमान, और जो पॉपुलेशन थी उनको काफियों को कैद कर लिया, कई जो उनसे थे वो उनके ट्रायल्स हो रहे थे। और उस दौरान एक पेपर सामने किया गया कि जम्मू और कश्मीर में हम लोग कोई वॉलंटियर्स भेजें ताकि जो खामोशी है जम्मू और कश्मीर में उसको जरा सामने लाएं और यूनाइटेड नेशंस की अटेंशन हो। प्रोजेक्ट को या उस फेज को ऑपरेशन जिब्राल्टर कहा गया। अगर सोचा जाए उस वक्त के 4000 वॉलंटियर्स सिविलियन सिर्फ राइफलें उठाई हुई इतने बड़े इलाके में हिंदुस्तान की फौज को किस तरह शिकस्त दे सकते हैं या हिंदुस्तान को किस तरह मारपीट के कश्मीर से निकाल सकते हैं, तो वो तो एकदम जंग छिड़ जाएगी इंटरनेशनल बॉर्डर पे। लेकिन भुट्टो साहब ने और अजीज अहमद ने और मेजर जनरल अख्तर मलिक साहब ने, इनका व्यू था कि नहीं, हिंदुस्तान में एक मायूसी जैसी है, 62 की जंग चाइना के साथ बुरी तरह इनको मारपीट की गई थी और रिस्पॉन्डेंस ये है हिंदुस्तान में, और एक और वेंचर ये लेने के लिए तैयार शायद ना हो। लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि अगर इतने लोग चले गए हैं अंदर और वो पकड़े भी जा रहे हैं और उनका सप्लाई रूट्स भी महफूज नहीं, रीसप्लाई करना रेशन एमिनेशन एवैक्यूएशन ऑफ कैजुअल्टीज कम्युनिकेशन, तो वो ऑफ द जो है गोरिल्ला टाइप एक्टिविटी करके जहां से उनको कोई खुराक मिले या कुछ मिले तो वो इस्तेमाल करें, तो वो सस्टेन नहीं हो सकता था। और काफी जगहों में हिंदुस्तान की फौज ने उनको उन इलाकों से निकालना शुरू कर दिया।
ऑपरेशन जिब्राल्टर के सैनिकों को 6 समूहों में बांटा गया था और उन्हें मुस्लिम योद्धाओं के कोड नेम दिए गए थे, तारिक, कासिम, खालिद, सलाउद्दीन, गजनवी और बाबर। हर व्यक्ति के पास 5 दिन का पका हुआ राशन और 5 ही दिनों का बिना पका हुआ राशन था। हर घुसपैठिए के पास एक लाइट मशीन गन भी थी। इसके अलावा हर सैनिक को 4-4 हैंड ग्रेनेड भी दिए गए थे। ये पूरी योजना इस आकलन पर आधारित थी कि कश्मीर के लोग उनके समर्थन में उठ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
There was no reaction from the Kashmiris. They were expecting कि कश्मीरी जो है अब के बोलेंगे 47, 48 में तो नहीं बोले। मामला ये है कि they were horrified कि कश्मीरी किसी ने कोई नारा तक नहीं लगाया। यानी अब तो बहुत लोग कर लेंगे अगर पाकिस्तानी बेवकूफी करे दोबारा।
पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल मूसा इस योजना के प्रति शुरू से आशान्वित नहीं थे, लेकिन अयूब ने उनकी हिचकिचाहट की तरफ ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त शंकर बाजपेयी कहते हैं,
इत्तेफाक की बात है कि उसी के 3-4 दिन पहले हमारा नए हाई कमिश्नर अपने क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट किए थे और अयूब साहब और भुट्टो साहब ने बड़ी मीठी मीठी बातें कही और उसके बाबत हमारे हाई कमिश्नर ने रिपोर्ट भेजी थी। ये मीठी बातें तो हो रही थी, मैं उसी के साथ साथ उनके ये एजेंट्स तो हमारे टेरिटरी पे आ गए थे, तो हम दोनों गए थे वापस और उनको कहा कि देखिए नहीं चलेगा, हमें क्या मालूम, ये तो हमारे लोग थोड़ी हैं, ये तो आप ही के लोग कुछ कर रहे होंगे। जनरल मूसा जो कमांडर इन चीफ थे उन्होंने कहा भाई इसमें मत फंसो, नहीं कुछ ज्यादा कर पाएंगे। तो उनको ये अयूब भुट्टो वगैरह कहने लगे क्या जनरल साहब आप तो जानते हैं एक पाकिस्तानी 10 हिंदुस्तानियों को फतेह कर सकता है। मूसा साहब ने कहा हो सकता है वो ठीक है मगर जब 11वां खड़ा होगा तो मैं क्या करूंगा। अयूब खुद इतने कीन नहीं थे मगर पर्सुएड हो गए थे।
ऑपरेशन जिब्राल्टर की असफलता का मुख्य कारण था समय और तैयारी की कमी। हालांकि पश्चिम कमान के प्रमुख जनरल हरबख्श सिंह ने माना है कि कागज पर ये योजना जबरदस्त थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई गलतियां की गईं। इस अभियान में भेजे गए सैनिकों का मूल्यांकन करते हुए ब्रिटिश मिलिट्री रिव्यू ने लिखा कि ये सैनिक न तो शारीरिक रूप से फिट थे और न ही इन्हें अपने लक्ष्य की विस्तृत जानकारी दी गई थी। जिब्राल्टर के अधिकतर कमांडर कश्मीरी बोलना तक नहीं जानते थे। पाकिस्तान के सैनिक इतिहासकार शौकत कादिर मानते हैं कि इस प्लान की सबसे बड़ी खामी थी कि कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं बनाया गया था।
परेशान हूँ कि ये क्यों हमने किया, ऑपरेशन के बॉर्डर का कोई माने वजह नहीं समझ आती, बाकूर वजह नहीं समझ आती फौजी नजरिए से। ये जरूर है कि किसी वजह से तारीख में ये लिखा हुआ है ये जुल्फिकारी भुट्टो जो फॉरन मिनिस्टर थे उन्होंने अयूब खान को ये तासुर दिया कि अगर हम हमला करेंगे यहाँ पे कोई कार्रवाई करेंगे तो हिंदुस्तान सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल तक ही अपना जो है महदूद रखेगा और पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा। अयूब खान ने ये बात क्यों मान ली ये सिर्फ अयूब खान जानते हैं, क्योंकि इस बात की कोई दलील के लिए कोई ऐसी ठोस वजूहत नहीं पेश की जा सकती जिसको एक फौजी कमांडर मान ले, मगर उसने मान लिया। एक गुरिल्ला ऑपरेशन के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि आप उधर के इलाके से वाकिफ हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं मालूमात हासिल करते हैं, फिर लोकल सपोर्ट हो, ना लोकल सपोर्ट थी ना कोई मालूमात हासिल की गई, सिर्फ एक हवाई गैस लगाने के लिए उसने दो साहब ने भी फरमा दिया कि जी हिंदुस्तान महदूद रहेगा यहाँ तक, उसने पाकिस्तान ये फैसला कर लिया, बहुत अहमकाना हरकत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए।
जनरल मूसा ने अपनी आत्मकथा माई वर्जन में लिखा है कि इस योजना को इतना गुप्त रखा गया कि भारतीय कश्मीर के उन नेताओं तक को इसकी पूर्व सूचना नहीं दी गई जिनसे पाकिस्तान सहायता की उम्मीद कर रहा था।
इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खामी थी कि हमने सीमा पार के नेताओं को इस बारे में हवा भी नहीं लगने दी। उन्हें इस अभियान में शामिल करना तो बहुत दूर की बात थी।
8 अगस्त को आकाशवाणी ने जिब्राल्टर फोर्स के पकड़े गए 4 अफसरों के इंटरव्यू प्रसारित किए। उन्होंने रेडियो पर पूरी योजना का भंडाफोड़ कर दिया। अल्ताफ गौहर अयूब खां पर लिखी अपनी किताब में लिखते हैं,
जब मैंने ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के निदेशक ब्रिगेडियर इरशाद को बताई तो उनके मुंह से निकला, ओह माय गॉड, द बास्टर्ड्स हैव स्पिल्ड द बीन्स। 24 घंटों के अंदर ये योजना जिसे इसे अमल करने वालों से भी छिपा कर रखा गया था दुश्मन के हाथों में थी।
सैनिक रूप से यह अभियान भले ही असफल हो गया लेकिन इसने बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को इन घुसपैठियों को ढूंढने में व्यस्त रखा। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
भारत प्रशासित कश्मीर में सेना और चरमपंथियों के बीच एक के बाद एक झड़पें हो रही हैं। ताज़ा मुठभेड़ में 4 चरमपंथी और 1 सैनिक की मौत हुई है। ये दूसरी झड़प है। इससे पहले भी एक मुठभेड़ में एक चरमपंथी और एक सैनिक की मौत हो गई थी। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
उत्तरी कश्मीर के जंगली क्षेत्रों में मंगल की रात से ही सेना और पुलिस के ऑपरेशन जारी हैं। ताजा मुठभेड़ कल रात नियंत्रण रेखा के निकट कोपारा के विलगाम इलाके में शुरू हुई। सूत्रों ने बताया कि ये सूचना मिलते ही कि गांव में चरमपंथी मौजूद हैं, सेना और पुलिस ने इलाके का घेरा करके साझा ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के पहले ही चरण में चरमपंथियों के एम्बुश में एक सैनिक मारा गया और बाद में रात भर जारी रहने वाली मुठभेड़ में चार चरमपंथी मारे गए।
रात के 8:30 के करीब मिलिटेंटों ने हमारे जो एम्बुश पार्टीशन पर फायर खोला और पूरी रात फायर पर चलती रही और मार्गिंग में हमें चार मिलिटेंट मिले। इधर से एक जेड है, उसको हॉस्पिटल हम लोगों ने रेफर किया, तो रिकवरी 4 AK-47 है और हर एक के साथ 5-5 मैगजीने हैं, बाकी ग्रेनेड्स वगैरह।
पुलिस का कहना है कि घेरा तोड़ने के प्रयास में चरमपंथियों ने फायरिंग की थी, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स का एक सैनिक मारा गया। पुलिस ने बताया कि मारे गए चरमपंथी लश्करे तैयबा से जुड़े थे। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले भी मंगल की शाम खुफिया सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने सोपोर के लाडुरा गाँव को घेर लिया, तो वहाँ एक मकान में छुपे चरमपंथियों ने फायरिंग की। इस हमले में भी एक सैनिक मारा गया। सोपोर के उच्च पुलिस अधिकारी अब्दुल कयूम ने BBC को बताया कि सेना और पुलिस के ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन का चरमपंथी रियाज अहमद मारा गया। पुलिस को सोपोर में रियाज के अलावा इम्तियाज गोंदू की ही तलाश थी। इम्तियाज के सर पर 10 लाख रुपए का इनाम है। गौरतलब है कि इस वर्ष के शुरू से ही कश्मीर में हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। पुलिस के मुताबिक शुरू के ही 8 महीनों में 60 से ज्यादा चरमपंथी मुठभेड़ों में मारे गए। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। US ओपन में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत से आगाज किया है। भारतीय दिग्गज खिलाड़ी लियांड्रा पेस मिक्स डबल्स और रोहन बोपन्ना पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पेस ने अपनी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर घरेलू खिलाड़ी टेलर हेनरी फ्रिट्स और सी ल्यू को 6-2, 6-2 से हराया। चौथी वरीयता प्राप्त भारतीय स्विस जोड़ी को ये मुकाबला जीतने में महज 46 मिनट का समय लगा। वहीं दूसरी तरफ रोहन बोपन्ना ने रोम के फ्लोरेन मर्जी के साथ मिलकर US जोड़ी राजीसेको निकोलस मोन्ड्रो को 6-3, 6-4 से मात दी। दूसरे दौर में इस जोड़ी का मुकाबला पोलैंड मेक्सिको की जोड़ी मारियस फ्रेटसनबर्ग और सेंटियागो गोंजालेस से होगा। वहीं पुरुषों के सिंगल्स मुकाबलों में विश्व नंबर 8 स्पेन के रफाल नडाल तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। नडाल ने अर्जेंटीना के डियागो श्वार्ट्समैन को 7-6, 6-3, 7-5 से हराया। इस साल नडाल किसी भी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे। अपनी हालिया गिरती फॉर्म के बारे में नडाल का कहना है,
I am number 8 in the world. I am not number 100, you know. Yeah, but I don't know, you know, seems like I am number 200 in every press conference.
मैं विश्व नंबर 8 खिलाड़ी हूं, 100वां नहीं। हर बार मुझे ये एहसास कराया जाता है जैसे मेरी रैंकिंग 200वीं है। मैं इतना बुरा खिलाड़ी भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मेरे प्रशंसक चिंतित हैं। खराब प्रदर्शन करने पर मुझे भी तकलीफ होती है।
नडाल के अलावा जो विल्फ्रेंड सोंगा, मार्टिन सिलिच, डेविड फेरर और नोवाक जोकोविच ने भी अपने अपने सिंगल्स मुकाबले जीतकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं महिला वर्ग में विश्व नंबर 1 सेरेना विलियम्स भी तीसरे दौर में पहुंच गईं। सेरेना ने दूसरे दौर में डच खिलाड़ी कीकी बर्टेंस को 7-6, 6-3 से हराया। अगले दौर में सेरेना का सामना हमवतन बेथनी माटेक से होगा। इस मैच के लिए बेथनी माटेक ने कमर कस ली है।
You know what? She's playing great. I mean, right now she's, you know, on a mission to.
वो उम्दा खिलाड़ी है। इस वक्त वो कैलेंडर ग्रैंड स्लैम पूरा करने के मिशन पर है। पर मेरा ध्यान अपने खेल पर है। मुझे लगता है मुकाबला अच्छा होगा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी।
विश्व नंबर 25 कनाडा की यूजनी बुकार्ड और पोलिश खिलाड़ी एग्नियश्का रद्वांस्का भी महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गईं। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
ये थी राखी शर्मा और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के नजदीक प्रवासियों और पुलिस के बीच फिर से झड़पों की खबरें आ रही हैं। ये झड़पें तब हुईं जब प्रवासियों और शरणार्थियों को ट्रेन से उतारकर जबरन एक ट्रांजिट कैंप में भेजा जा रहा था। इससे पहले प्रवासियों से खचाखच भरी एक ट्रेन बुडापेस्ट के अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन से रवाना की गई थी। उत्तरी कैमरून में हुए 2 बम धमाकों में कई लोगों की मौत की खबर है। एक सैनिक कैंप में हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं केरावा शहर के बाजार में हुए धमाकों में मारे गए लोगों की संख्या का अभी पता नहीं चला है। मलेशिया के सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि करीब 100 से ज्यादा लोगों को ले जा रही एक नाव देश के पश्चिमी तट के पास पलट गई है। 15 लोगों को बचाया जा सका है। वहीं 14 शव निकाले गए हैं, जिनमें 13 महिलाओं और एक पुरुष का शव है। तुर्की की पुलिस ने ग्रीस जा रही नाव के डूबने से हुई 12 लोगों की मौत के मामले में 4 संदिग्ध मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मारे गए लोगों में 3 साल का सीरियाई बच्चा ऐलान कुर्दी भी शामिल था, जिसका शव की तस्वीर दुनिया भर के अखबारों और सोशल मीडिया पर छा गई थी। ग्वाटमाला के राष्ट्रपति पद से ऑटो पेरेज मोलिना के इस्तीफे देने के बाद उपराष्ट्रपति एलेक्सांद्रो माल्डोनाडो कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकते हैं। एक अदालत ने राष्ट्रपति पेरेज मोलिना के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। पेरेज मोलिना को देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। तुर्की से मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक पिछले गुरुवार गिरफ्तार किए गए तीन पत्रकारों में से दो ब्रितानी पत्रकारों को रिहा कर दिया गया है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दे अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में।